ओम कृष्णाय नमः। यह एक अत्यंत ही प्रभावशाली मंत्र है। संस्कृत में कहा गया है, मननम त्रायते इति मंत्र है। अर्थात यदि मंत्र का भाव समझकर मंत्र पाठ किया जाए तो मंत्र सुरक्षा प्रदान करता है। एक मंत्र वेदों में बताया गया है, मनः एव मनुष्यानाम कारणं बंध मोक्ष्योः। अर्थात मनुष्य के बंधनों का अथवा मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र कारण मनुष्य का मन है। मनुष्य का मन एक कुंजी है। कुंजी को आप उल्टी ओर घुमाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा। उसी कुंजी को आप सीधी ओर घुमाइए तो ताला खुल जाएगा। ठीक इसी तरह यदि आप अपने मन की कुंजी जीवन रूपी ताले में उल्टी ओर घुमाएंगे तो बंधन का अनुभव करेंगे और सीधी ओर घुमाएंगे तो मुक्ति का अनुभव करेंगे। और मन को सीधी ओर घुमाए रखने में मंत्रों की ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने एक कैदी को एक कमरे में बंद किया तथा एक अन्य कैदी को दूसरे कमरे में बंद किया। दोनों कैदियों के शरीर में उन्होंने कुछ नसें काटी और उनसे कहा कि हम तुम्हारे शरीर का सारा खून निचोड़कर तुम्हारी जान ले लेंगे। खून धीरे धीरे बूंद बूंद करके एक बर्तन में गिरने लगा और गिरने की ध्वनि टप 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 आती गई। दोनों ही कमरों में यही प्रयोग चल रहा था। इसके बाद एक कमरे के कैदी की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने उसके घाव से खून का टपकना तो बंद किया किंतु टपकने की ध्वनि टप 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 टेप रिकॉर्डर के माध्यम से निरंतर जारी रखी। अब एक कमरे में कैदी वास्तव में अपने शरीर से खून निकलता देख भी रहा है और उसकी ध्वनि भी सुन रहा है, और दूसरे कमरे का कैदी पट्टी बांधे बैठा है, वास्तव में लहू का टपकना बंद कर दिया गया है परंतु ध्वनि निरंतर आ रही है टपकने की। उसके मन में भ्रम है कि रक्त टपक रहा है। और पाया गया कि कुछ पहर बाद दोनों कैदी मृत्यु को प्राप्त हुए। मात्र मन के भ्रम से भ्रमित होकर कैदी की मृत्यु हो गई जबकि रक्त का प्रवाह वास्तव में रोका जा चुका था। मित्रों, मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली है। 75% सर्पदंश विषाक्त नहीं होते किंतु कितने ही मनुष्य मात्र सर्पदंश के भय से मर जाते हैं। मनुष्य के मन में इतनी शक्ति है, इसीलिए वेदों में कहा गया है कि मनुष्य का मन बंधन और मुक्ति दोनों का ही कारण है। मंत्र इस मन को ऊर्जा प्रदान करके शक्तिशाली बनाने में पूर्णतः सक्षम है। आवश्यकता है विश्वास की। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ यदि मंत्र पाठ किया जाए तो निश्चय ही लाभ होता है। मंत्र मन को किस तरह ऊर्जा प्रदान करता है, ध्यान दें। मनुष्य के मन में हीन एवं उच्च दोनों ही प्रकार की भावनाएं पाई जा सकती हैं। हीन भावनाएं होंगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य की। यह सारी भावनाएं हीन प्रकार की हैं। इन भावनाओं से परिपूर्ण मन मस्तिष्क का शरीर पर भी हीन प्रभाव पड़ेगा। इन हीन भावनाओं में लिप्त मन में क्रोध, घृणा एवं द्वेष जैसी प्रवृत्तियां भी जन्म लेंगी और ऐसी हीन मनस्थिति वाले मनुष्य का शरीर भी निरोगी नहीं रह सकता। ऐसे मनुष्य के जीवन की शांति, निश्चलता एवं स्थिरता नष्ट हो जाएगी। इसके ठीक विपरीत मनुष्य के मन में उच्च विचार एवं भावनाएं भी पाई जा सकती हैं। ये हैं प्रेम, दया, क्षमा की भावनाएं। इन भावनाओं से संबंधित ऊर्जा भी उच्च प्रकार की होगी। मंत्रोच्चार द्वारा मनुष्य इनसे भी ऊंची, इनसे भी पवित्र एवं शक्तिशाली सुंदर ऊर्जाओं का सृजन अपने मन मस्तिष्क में कर सकता है। आवश्यकता है तो केवल श्रद्धा की, विश्वास की। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ मंत्र पाठ किया जाना चाहिए। ओम कृष्णाय नमः, यह एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, एक अत्यंत लाभकारी प्रार्थना है। और प्रार्थना निष्काम निर्दोष मन से की जानी चाहिए। प्रार्थना को लोभ जनित नहीं होना चाहिए। निष्काम निर्दोष श्रद्धा एवं विश्वास की उत्तम भावनाएं मन में हों तो मंत्रों का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। एक भोला सा व्यक्ति प्रार्थना में लीन है, ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, मुझे संस्कृत की मोटी मोटी प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं यह ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानता कि सही प्रार्थना का व्याकरण और सुरताल क्या होना चाहिए, लेकिन मेरी भावना सच्ची है। मैं तन मन से तुम्हारे प्रति समर्पित हूं। तो हे ईश्वर, मैं देवनागरी की सारी वर्णमाला क से लेकर के ज्ञ तक तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। तुम अपनी पसंद के अक्षर इनमें से चुन चुन कर अपने लिए अच्छी से अच्छी प्रार्थना तैयार करो और उसे मेरी प्रार्थना समझकर स्वीकार करो। और कहते हैं ईश्वर ने कहा कि यह प्रार्थना आज तक की सारी प्रार्थनाओं में सबसे सुंदर प्रार्थना थी। मित्रों, जहां सच्ची श्रद्धा हो, जहां सच्ची भावना हो, सच्ची प्रार्थना वहीं हो सकती है। ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है शून्य, मौन। जागृत, स्वप्न एवं निद्रा, इन तीन अवस्थाओं से अलग चौथी अवस्था चेतना की है मौन, शून्य की अवस्था। इस अवस्था को तुरिया अवस्था भी कहा गया है। तो इस शून्य मौन की अवस्था में डूबकर मंत्र पाठ किया जाना चाहिए। तब जाकर मंत्र मन की गहराई तक डूबते हैं। इसके विपरीत यदि लोभ से प्रेरित होकर मंत्र का जाप किया जाए तो मंत्र का लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोभ अशांति को जन्म देगा तथा अशांति की अवस्था में मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। मंत्र एक बीज की भांति है। बीज यदि बंजर भूमि में बो दिया जाए तो अंकुरित नहीं हो सकेगा। ठीक इसी तरह अशांत मन में मंत्र का बीज अपनी शक्ति खो देगा। इसीलिए ओम से अर्थ है मौन का, शून्य का। मंत्र पाठ मौन में डूबकर शांति से शून्य की अवस्था में किया जाना चाहिए। एक युवक शांत मौन प्रार्थना में लीन था। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, ईश्वर तुमसे क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि ईश्वर मुझसे कुछ नहीं कहते, मैं केवल सुनता हूं। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, तुम ईश्वर से क्या कह रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं भी ईश्वर से कुछ नहीं कहता हूं, वे केवल सुनते हैं। तो मित्रों, प्रार्थना की चार अवस्थाएं होती हैं। मैं कहूं, आप सुने। दूसरी, आप कहें, मैं सुनूं। दोनों कुछ न कहें, दोनों सुने। और चौथी, दोनों कुछ न कहें, दोनों कुछ न सुने, मात्र मौन हो। मौन सबसे उच्च स्थिति है प्रार्थना की। इसीलिए ओम से अर्थ है मौन का, शून्य का। मौन तथा शून्य की अवस्था में ही मंत्र पाठ किया जाना चाहिए। और शून्य की अवस्था के लिए आवश्यक है विश्वास। प्रभु जानते हैं कि मेरे कथन का अभिप्राय क्या है, वे जानते हैं कि मेरी क्या आवश्यकताएं हैं, वे मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, मेरी चाह से भी अधिक मात्रा में। यह विश्वास होना चाहिए। चाह अहंकार जनित है, चाह को छोड़िए। यह आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम है। ईश्वर में विश्वास रखिए, वह मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करेगा। ऐसा विश्वास मन में धारण कीजिए और अपने आप मौन की, शून्य की, ओम की अवस्था का सृजन होगा आपकी चेतना में। यह विश्वास अवश्य जागेगा आपके मन में यदि आप यह समझ लें कि यह विश्व, यह सुंदर रचना एक सुबोध रचना है और हर सुबोध रचना के पीछे एक सुबोध रचनाकार का होना आवश्यक है। हर सुबोध रचनाकार के किसी भी सृजन के लिए दो प्रकार के कारण आवश्यक हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपधार कारण। उदाहरण के लिए कुम्हार को देखिए, जब वो मटकी बना रहा है तो निमित्त कारण तो वह स्वयं है, उस सृजन का उपकरण या औजार, किंतु उपधार कारण है मिट्टी। ठीक इसी तरह इस सारे विश्व की रचना में जो वस्तु उपयोग में लाई गई है वह सिवाय स्वयं ईश्वर के और कुछ नहीं हो सकती। ईश्वर ने स्वयं अपने आप में से इस जगत की रचना की है, इसीलिए वेदों में कथन है, ईशावास्यम इदगुम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, अर्थात इस विश्व की हर वस्तु में ईश्वर का वास है, ठीक उसी तरह जैसे माला में धागा। मित्रों, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अगर यह सत्य है तो मैं क्यों ईश्वर को नहीं देख पा रहा हूं? आप इसलिए ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप देखने के लिए जागृत ही नहीं हैं, और मात्र जागृति ही नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए शांत चित्त एवं पवित्र भाव की आवश्यकता होगी। इस मनस्थिति में शांति, मौन एवं शून्य संभव है। इस स्थिति में ओम कृष्णाय नमः का जाप कीजिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब भी लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो चप्पल जूते बाहर ही खोल देते हैं, क्या अर्थ हुआ इसका? हम इस धरती को अपने पैरों से छूते हैं। ठीक इसी तरह अपने जीवन को आप अपने मानसिक पैरों से छूते हैं। मंदिर में जाते समय आप अपनी गंदगी, चप्पल जूते बाहर छोड़कर पवित्र भाव से अंदर प्रवेश करते हैं। मंत्र पाठ के समय भी इसी तरह अपनी मानसिक गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य का परित्याग करके पवित्र भाव से मंत्र पाठ किया जाना चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्ति की संभावनाएं खुलती हैं। अतः ओम का अर्थ है मौन, शांति। कृष्णाय शब्द से अर्थ है ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति। कृष्ण शब्द की परिभाषा में कहा गया है आकर्षणम इति कृष्ण, अर्थात जो आकर्षित करता है उसका नाम कृष्ण है, और ईश्वर की ऊर्जा का आकर्षण तो असीमित है। ईश्वर की ऊर्जा में तीन प्रमुख लहरें व्याप्त हैं, आनंद लहरी, प्रेम लहरी एवं सौंदर्य लहरी। जब ये तीनों प्रकार की लहरें हों तो ऊर्जा वास्तव में दैवी स्वरूप हो जाती है। आनंद लहरी से अर्थ है आनंद की लहरें। यदि आप श्री कृष्ण के जीवन में झांकें तो पाएंगे कि उनके जन्म से पहले से उनका जीवन समस्याओं में, कठिनाइयों में घिरा हुआ था। उनके जीवन काल में घोर कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, किंतु उनका व्यक्तित्व इन समस्त समस्याओं के चलते सर्वदा आनंदमय ही था। वह हर पल आनंद की मानो वर्षा करते रहे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की एक महत्वपूर्ण सामग्री आनंद है। परिस्थितियों से ऊपर उठकर कठिनाइयों और समस्याओं से जूझते हुए यदि हम अपने व्यक्तित्व को वास्तव में आनंदमय बना सकें तो वह सच्ची पूजा होगी श्री कृष्ण की, इसीलिए कहा गया है आनंद लहरी। दैवी ऊर्जा में दूसरे प्रकार की लहर बताई गई है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य से अर्थ है सुंदरता का। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण गुण था हर वस्तु में, हर परिस्थिति में सुंदरता ढूंढ पाने का गुण। यदि आप ध्यान से देखें तो यह संसार, यह सारी रचना कितनी सुंदर है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, लेकिन ध्यान से सोचें, क्या यह साधारण घटनाएं हैं? सितारों जड़े रात के आंचल में शीतल चंद्र टंगा हुआ, क्या किसी मनुष्य के बस की बात है? नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट, शीतल बयार के झोंके और झूमते हुए वृक्ष, नीला आकाश और अटखेलियां करते हुए बादल, ओस की बूंदें और बदलते मौसम, अनेकों फूल और उतनी ही प्रकार की सुगंध। मित्रों, प्रकृति की सुंदरता असीमित है, अपरिमित है, अथाह है। यदि आप मन मस्तिष्क को शांत मौन रख सकें तो सौंदर्य लहरी का अनुभव कर सकेंगे। ईश्वरीय दिव्य ऊर्जा में तीसरी लहर बताई गई है प्रेम लहरी। आप जो भी कार्य करें प्रेम पूर्वक करें। प्रेम का भाव दिव्य है, ईश्वरीय है। श्री कृष्ण की पूजा के ये तीन प्रमुख भाव हैं, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी तथा प्रेम लहरी। मौन की शून्य की अवस्था में। तो ओम कृष्णाय नमः, ओम अर्थात मौन की शून्य की अवस्था, कृष्णाय अर्थात श्री कृष्ण के प्रति, और नमः अर्थात प्रणाम। नमः एक अति सुंदर शब्द है। न मम इति नमः, मेरा नहीं, मेरा नहीं। नमः का अर्थ है मेरा नहीं। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपकी सफलता में सदैव एक रहस्यमय स्रोत की सहायता का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि आप अच्छे वक्ता हैं तो आपका कंठ आपने नहीं बनाया है, यह ईश्वर प्रदत्त है। आप अच्छे दार्शनिक हैं तो विचार का उपकरण यह मन आपका सृजन नहीं है, यह सारे ईश्वरीय कृपा के, दैवी अनुग्रह के, दिव्य अनुकंपा के उपहार हैं। यह गहन भाव आप आत्मसात कर सकें तो कभी अहंकार नहीं होगा। अतः नमः अर्थात मेरा नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्रम भव, केवल एक निमित्त हो तुम, ऐसा पवित्र अहंकार रहित श्रद्धा का भाव आप धारण करेंगे तो रहस्यमय ढंग से जीवन में सहायताएं आनी आरंभ होंगी। ओम कृष्णाय नमः। इस पवित्र भाव में डूबकर आप मंत्र पाठ करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क एक शांत शीतल सी ऊर्जा का अनुभव करने लगेगा तथा भक्ति का यह भाव आपको विभोर कर देगा। ऐसी सुंदर शांत मानसिक अवस्था में आपका शरीर भी शांत स्वस्थ होगा, आप आरोग्य की अनुभूति करेंगे। अधिकांश मनुष्य रोगग्रस्त होते हैं अपनी चिंता के कारण। आपने कभी झूलने वाली कुर्सी देखी है, रॉकिंग चेयर? चिंता ठीक ऐसी ही है, आपको व्यस्त तो रखती है लेकिन उसी स्थान पर। मंत्र पाठ आपको चिंता मुक्त रखता है, शांत निरोगी स्वस्थ रखने में सहायता देता है। एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक मनुष्य नशे में चूर है, अपने रथ पर सवार अपनी दिशा ढूंढने का प्रयास कर रहा है। नशे में चूर है इसलिए घोड़ों को भी दाना पानी देने का ध्यान नहीं है। अब सोचिए ऐसे व्यक्ति की दशा क्या होगी। हम में से अधिकांश अपने अज्ञान के नशे में चूर अपने जीवन रूपी रथ पर अपनी भावनाओं के घोड़ों के साथ अपनी दिशा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्म इसी अज्ञान के नशे को समाप्त करने का एक मार्ग है। आपका जीवन ये रथ है, आपकी बुद्धि इस रथ की सारथी तथा इसके घोड़े आपकी भावनाएं हैं। सारथी की भाषा आपकी बुद्धि की भाषा घोड़े अर्थात भावनाएं समझ नहीं पाती, दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसीलिए दोनों के बीच, बुद्धि और भावनाओं के बीच समन्वय नहीं बैठ पाता। ऐसा जीवन में हम प्रतिदिन देखते हैं। आपकी बुद्धि कहती है कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी परिस्थिति में आपकी भावनाएं क्रोध भड़का देती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि की भाषा अलग है और आपकी भावनाओं की भाषा अलग। यदि सारथी हिंदी बोलता है और घोड़ा पंजाबी समझता है तब तो दोनों के बीच में समन्वय बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह आपकी बुद्धि तय करती है कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए किंतु आपकी भावनाएं ये भाषा नहीं समझती और क्रोध भड़क उठता है। आपके मन में, मस्तिष्क में तथा हृदय में समन्वय नहीं हो तो आपका जीवन दुष्कर, दुख भरा हो जाएगा। और गहरे सोचिए, यदि सारथी के पास अपने घोड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए लगाम नहीं होगी तो यात्रा कैसे होगी? सारा आध्यात्म आपके जीवन रूपी रथ को, आपकी भावनाओं रूपी घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए लगाम देने का ही कार्य करता है। आध्यात्म आपके मस्तिष्क और आपके हृदय के बीच, आपकी बुद्धि और आपकी भावनाओं के बीच सही समझ और सही ज्ञान का एक पुल सा बनाता है जिससे आपका मस्तिष्क आपके हृदय की भाषा समझ सके और आपकी भावनाएं आपकी बुद्धि की भाषा समझ सकें। और जब आपके मस्तिष्क के हाथ, आपकी बुद्धि के हाथ ये ज्ञान रूपी लगाम आ जाती है भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, तब जाकर सच्ची आध्यात्मिक साधना पूरी होती है। यदि आप गीता के उपदेश पर ध्यान दें तो पाएंगे कि वहां घोड़े भावनाओं का प्रतीक हैं, अर्जुन बुद्धि का प्रतीक है। अब इस बुद्धि को अर्जुन को कृष्ण की शरण में जाता हुआ बताया गया है। कृष्ण प्रतीक हैं सत्य का, अच्छाई का, ज्ञान का, और कृष्ण के हाथ में लगाम है भावनाओं रूपी घोड़ों की। यदि आपकी बुद्धि, मन, मस्तिष्क और भावनाएं इस तरह से सत्य, अच्छाई के प्रति समर्पित हो जाएं, तब जाकर के जीवन सुखमय होगा। यह मंत्र ओम कृष्णाय नमः रहस्यमय ढंग से आपके जीवन में ज्ञान की लगाम थमाता है बुद्धि के सारथी के हाथों, भावनाओं के घोड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए। जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप कीजिए। मौन शांत एक आसन पर पालथी मारकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और मन में आनंद का, सौंदर्य का, प्रेम का भाव लेकर इस मंत्र का पाठ करें। मन में यह भाव रखें कि आपने अपने शरीर के सारे रोगों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। जैसे पूजा में आप फूल चढ़ाते हैं, उसी श्रद्धा के साथ अपनी सारी व्याधियां ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। शारीरिक व्याधियां न हों तो मानसिक व्याधियां जैसे क्रोध, ईर्ष्या के साथ भी यही कल्पना करें। हर बार साथ में यह कल्पना करें कि इस मंत्र की शक्ति आपके शरीर के रोगी भाग पर प्रभाव डालकर उसे ठीक होने में सहायता प्रदान कर रही है। यह जाप इसी भाव के साथ कुछ समय तक चलने दें, तत्पश्चात मौन की स्थिति में कुछ देर तक बैठे रहें। जब मंत्र पाठ करें तो मंत्र के शब्दों का, सुर का तथा इनके मध्य में बसे मौन का अनुभव करें। धीरे धीरे इन भावों की गहराइयों में पूरी तरह डूबने का प्रयास करें। यह मंत्र एक बीज की भांति है। यदि आप आपके हृदय की भूमि उपजाऊ बनाएंगे और फिर उसमें मंत्र का बीज बोएंगे, तब जाकर इस मंत्र का प्रभाव रूपी वृक्ष अंकुरित होगा तथा आपके जीवन में सुख, शांति एवं आनंद भर देगा। अपनी दिनचर्या में आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी एवं प्रेम लहरी के भाव सम्मिलित करें। यही भाव वास्तव में ईश्वर का प्रतीक है, यही सच्ची प्राण प्रतिष्ठा है। हरिओम तत्सत।